रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।
आज है 4 मार्च, दिन गुरुवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें रोहित जोशी का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। म्यांमार में गुजरा खूनी बुधवार, लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सैन्य प्रशासन फिर हुआ हिंसक, गोलीबारी में 38 लोगों की मौत। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर संकट, सीनेट चुनावों में हार के बाद विश्वास मत की दरकार। चीन कर सकता है हांगकांग में चुनाव कानूनों में बड़े बदलाव। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में रोहित जोशी के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। म्यांमार में तख्तापलट के बाद एक महीने से लोकतंत्र बहाल करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए बुधवार का दिन अब तक का सबसे खून खराबे वाला दिन साबित हुआ है। देश के कई हिस्सों में सेना और पुलिस ने शांति से विरोध जता रहे लोगों पर बिना चेतावनी फायरिंग कर दी, जिससे 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे खूनी बुधवार करार दिया है। एक रिपोर्ट सुनते हैं हमारे सहयोगी शादाब हसन खान से।
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के एक महीने बाद बुधवार को सेना और पुलिस की फायरिंग में विरोध प्रदर्शन कर रहे कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे खूनी बुधवार करार देते हुए कहा कि तख्तापलट के विरोधियों पर यह अब तक का सबसे हिंसक हमला है। म्यांमार के कई इलाकों में शांति से विरोध जता रहे लोगों पर पुलिस और सेना ने गोलियां दागीं। यह सब उस वक्त हुआ है जब विश्व समुदाय और पड़ोसी देशों ने सेना से धैर्य बरतने की अपील की है। चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस और सैनिकों ने बिना चेतावनी दिए अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की राजदूत क्रिस्टिन श्रेनर ने कहा है कि देश भर से दिल दहलाने वाले फुटेज सामने आ रहे हैं। पिछले महीने से जारी प्रदर्शनों में अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। तकरीबन 1200 लोग हिरासत में लिए गए हैं। श्रेनर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर 9mm की सब मशीन गन से असली गोलियां चलाई गईं। एक जगह के फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक को पकड़कर बिल्कुल नज़दीक से गोली मार दी गई। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रेन का कहना है कि जिन लोगों को बुधवार को मारा गया है उनमें 14 और 17 साल के दो लड़के हैं। इनमें एक 19 साल की लड़की भी है। अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने इसकी निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र से मसले का समाधान तलाशने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा, हम सभी देशों से अपील करते हैं कि बर्मा की सेना के अपने ही लोगों पर इस तरह का क्रूर सलूक करने की एक स्वर में निंदा करें।
रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं, और मैं हूँ रोहित जोशी। अब रुख अगली खबर का। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने राजनीतिक संकट आ खड़ा हुआ है। सीनेट इलेक्शंस में उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के राजधानी इस्लामाबाद की बेहद महत्वपूर्ण सीट हार जाने के बाद अब इमरान खान को पाकिस्तानी संसद में विश्वास मत हासिल करना होगा। बुधवार को पाकिस्तानी संसद के 99 सदस्यों वाले उच्च सदन सीनेट की 48 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बेहद महत्वपूर्ण इस्लामाबाद की सीट से पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख को शिकस्त दी है। हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा था, जिसमें गिलानी को 169 और हाफिज शेख को 164 वोट मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP से ताल्लुक रखने वाले गिलानी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन की ओर से उम्मीदवार थे। इस बेहद अहम सीट को हार जाने के बाद अब इमरान खान सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर चुनाव नतीजों की घोषणा गुरुवार को होनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से अनाधिकारिक तौर पर मिले नतीजों में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को नेशनल असेंबली में हार का सामना करना पड़ा है, जहां वह अपने गठबंधन दलों के साथ बहुमत में थे। इधर हांगकांग में चीन समर्थित संसद चुनाव कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि हांगकांग की संसद इसी हफ्ते एक ऐसा कानून बना सकती है जिससे यह तय किया जाएगा कि कौन चुनाव लड़ने के काबिल है और कौन नहीं। हांगकांग की संसद के उच्च पदाधिकारी आज बीजिंग में होने वाली सालाना बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। चीन में इसे टू सेशंस के नाम से जाना जाता है। पहली बैठक 4 मार्च को चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस से है, जिसका सिर्फ कागजी महत्व ही है, जबकि अहम माने जाने वाली दूसरी बैठक 5 मार्च को होगी, जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। इससे पहले पिछले साल मई में यह बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास कर 30 जून से हांगकांग में लागू किया गया था। उसके बाद से ही हांगकांग में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए थे। पिछले रविवार को लोकतंत्र समर्थक 47 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई थी। इधर अफगानिस्तान में हुई मीडिया कर्मियों की हत्या की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है, जबकि अफगान सरकार अब तक इसके लिए तालिबान को जिम्मेदार बता रही थी। इस्लामिक स्टेट की ओर से कहा गया है कि इन महिला पत्रकारों की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे एक ऐसी सरकार के वफादार मीडिया स्टेशन के साथ काम कर रही थी जिसने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। इन हत्याओं के लिए जिस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है उसका ताल्लुक तालिबान से रहा है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस हमले में तालिबान के शामिल होने से इनकार किया है। अफगानिस्तान में बीते 6 महीनों में 15 मीडिया कर्मियों की हत्याएं हो चुकी हैं। इस बीच अफगानिस्तान में इन हत्याओं के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि यह बेगुनाह हमवतन लोगों, खासकर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, जो कि इस्लाम की शिक्षाओं और अफगान संस्कृति और शांति की भावना के खिलाफ है। इधर पश्चिमी इराक में अमेरिकी गठबंधन बलों की मौजूदगी वाले एक सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाकर बुधवार को कम से कम 10 रॉकेट दागे गए। गठबंधन सेना के प्रवक्ता कर्नल वाइने मोरोटो ने बताया कि अनबार प्रांत के एन अल असद सैन्य हवाई अड्डे पर सुबह 7 बजे रॉकेट दागे गए। अब तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इराकी सेना ने एक बयान में कहा है कि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और सुरक्षा बलों ने मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च पैड का पता लगा लिया है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते सीरिया इराक की सीमा के पास ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे, जिसमें मिलिशिया के एक सदस्य की मौत हो गई थी। अमेरिका के उस हमले के बाद यह पहला हमला है। अमेरिकी हमले के बाद से जवाबी हमले की आशंका जताई जा रही थी। अब चलते चलते एक और खबर पर नजर। बुधवार को ग्रीस के मध्य क्षेत्र में 6.3 मैग्नीट्यूड के एक तगड़े भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। इसके बाद से अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर EMSC ने बताया है कि यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में था और इसका एपिसेंटर एलेसोना शहर के दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर दूर था। हालांकि अब तक भूकंप के झटकों के बाद से किसी की भी मौत की कोई खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घरों के बाहर ही बने रहें क्योंकि अभी आफ्टर शॉक्स का खतरा बरकरार है। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।